दिन भर 25 अक्टूबर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, लेकिन मामला जस का तस।
हमारे परिवार एक है, पार्टी एक है, परिवार एक है, पूरे कार्यकर्ता पूरे नेता एक है।
देखेंगे किस तरह भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्ते जगह बना रहे हैं भोजपुरी के देवी गीतों में। जिक्र होगा पाकिस्तान में क्वेटा में हुए चरमपंथी हमले का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पूरी पार्टी एक है और कहीं कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके भाई शिवपाल सिंह यादव को मंत्रिमंडल में वापस लेने का फैसला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। मुलायम सिंह ने खुद मुख्यमंत्री पद संभालने की तमाम अटकलों को भी खारिज कर दिया। पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में सोमवार रात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हुए चरमपंथी हमले के लिए शिया विरोधी चरमपंथी गुट लश्करे झंगवी को जिम्मेदार बताया है। लश्करे झंगवी पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमानों का खतरनाक चरमपंथी संगठन है। कल हुए आत्मघाती हमले में करीब 60 जवानों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी दो गुटों तथा कथित इस्लामिक स्टेट और तालिबान ने ली थी। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े थीम पार्क में एक राइड के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। क्वींसलैंड स्टेट के ड्रीम वर्ल्ड में थंडर रैपिड नाम की राइड में गड़बड़ी के चलते यह हादसा हुआ। पानी में चलने वाली इस राइड से 2 लोग गिर गए थे, जिसके बाद 2 और लोग उसमें फंस गए। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ये थीम पार्क गोल्ड कोस्ट का सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। राज्य की प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे ने इस दुर्घटना को दुखद बताया। क्वींसलैंड और देश काफी सदमे में है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के साथ हमारी सहानुभूति और प्रार्थनाएं हैं। हमें जानकारी मिली है कि वहां फॉरेंसिक जांचकर्ता पहुंच गए थे, वहां स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी भी थे, लेकिन फिर भी लोगों ने जो कुछ ड्रीमलैंड में देखा वो भयावह था। ये थे एनेस्थीसिया पैलेशे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक इराक के मोसुल के आसपास के इलाकों में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने नागरिकों को मार दिया है। संयुक्त राष्ट्र को पता चला है कि एक जगह आईएस ने 15 लोगों को मार दिया ताकि लोगों में डर फैल सके। आईएस ने कथित तौर पर 3 महिलाओं और 3 बच्चों को भी मारा है। फ्रांस के कैले में जंगल के नाम से जाने जाने वाले शरणार्थी शिविर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। विस्थापितों को बसों में बैठाकर वहां से हटाने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। शिविर से 8,000 लोगों को फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया है। जंगल में कई साल से हजारों शरणार्थी ब्रिटेन में प्रवेश पाने की उम्मीद में रह रहे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम से कैंपेन चलाने वाली संस्था का कहना है कि तुर्की पुलिस जुलाई में हुए नाकाम तख्ता पलट के बाद बंदी बनाए गए आरोपियों पर अत्याचार कर रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शुरुआत आज भी उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो ऐसा लगा कि जैसे परिवार का विवाद कुछ सुलझ गया है और इसकी वो सूचना देना चाहते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और बातें भी उन्होंने वही कहीं जो पहले से कहते रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नेताओं के अलावा शिवपाल यादव और गायत्री प्रजापति भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नजर नहीं आए। वहीं पार्टी दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और अखिलेश यादव को आगामी चुनाव में सीएम चेहरा घोषित करने की मांग की। पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दे रहे हैं लखनऊ से समीर आजमत मिश्र।
सोमवार को समाजवादी पार्टी के मंच पर जो कुछ हुआ वो किसी रंगमंच से कम नहीं था। एक्शन, ड्रामा सब कुछ था और अंत होते होते मारधाड़ जैसी नौबत भी आ ही गई थी। फिर भी आज दोपहर जब मुलायम सिंह यादव ने पत्रकारों को बुलाया तो ऐसा लगा कि शायद कुछ बात बन गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवाल जवाब के बाद वही ढाक के तीन पात। भीतर का दृश्य भी वैसा था जैसा कि बिना समझौते के कल्पना की गई थी, यानी मंच पर शिवपाल मुलायम खेमे के लोग थे, अखिलेश और उनके खेमे के लोग बाहर। बातें भी मुलायम सिंह ने वही की जो कि अभी तक करते आ रहे थे।
हमारे परिवार एक है, पार्टी एक है, परिवार एक है, पूरे कार्यकर्ता पूरे नेता एक है, बीच में क्यों ना।
बोले परिवार में सब ठीक है, लेकिन अखिलेश के ना आने की वजह और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर गोलमोल जवाब।
अखिलेश मुख्यमंत्री है, देखिए हमारी लोकतांत्रिक पार्टी साफ हो गई है। अभी भी जब हमने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तो विधानमंडल की बैठक में नाम पेश किया, उन्होंने समर्थन दिया। तो अगर विधायक चुने जाते हैं, समय ये परंपरा है हमारी पार्टी में नहीं, चाहे आपकी दिल्ली सरकार बनी हो, सांसदों के बीच कोई चुनाव में जरूर घुटा भरी काम हमारे सामने बनेंगे।
यही नहीं, जब उनसे यादव परिवार में अखिलेश यादव के सबसे खास व्यक्ति रामगोपाल यादव के बारे में बात की गई तो ऐसा जवाब दिया जैसा कोई सोच भी नहीं सकता था।
रामगोपाल जी ने कहा है
एक छोटे सिक्के के लिए,
उनकी बात का अब कोई महत्व नहीं देता।
मुलायम सिंह यादव ने न तो अखिलेश यादव को आगामी चुनाव में पार्टी का चेहरा बनाने की बात कही, न ही रामगोपाल यादव और उनके युवा समर्थकों की पार्टी में वापसी की बात की, और न ही पार्टी में अखिलेश को कोई महत्वपूर्ण पद देने की बात की। लेकिन मंत्रियों को वापस लेने की बात उन्होंने मुख्यमंत्री पर छोड़ दी। जानकारों का कहना है कि इससे साफ है कि पिछले 24 घंटों के दौरान यदि विभिन्न दौर की वार्ताएं हुई भी तो उनमें समझौते को लेकर कोई गंभीरता नहीं थी। मुलायम सिंह यादव से यह भी पूछा गया कि शिवपाल यादव उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो मुलायम सिंह ने इस इच्छा से इनकार भी नहीं किया। इस बीच इधर मुलायम सिंह और उनकी टीम पत्रकारों से बात कर रही थी और बाहर अखिलेश यादव के समर्थक झंडे बैनर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इन समर्थकों की मांग थी कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे में पेश करके आगामी चुनाव लड़ा जाए। वहीं जानकारों का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव भी आते, लेकिन जिस तरह से उनकी शर्तों और उनके समर्थकों को नज़रअंदाज किया गया, इससे ये साफ है कि सोमवार को उन्होंने जिस दर्द का इजहार किया था वो उनके भीतर गहराई तक पहुंच गया है। इसके बावजूद मुलायम सिंह यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो तमाम लोगों के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी बढ़ गईं। लेकिन अंत में जो कुछ भी हुआ उसके बाद कुछ लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुलना गालिब के इस शेर से करते दिखे, थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
पार्टी दफ्तर के बाहर जहां तमाम युवा अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, वहीं शिवपाल के भी समर्थक डटे हुए थे। उनके बीच किसी तरह का टकराव न होने पाए इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस और PAC के जवानों को तैनात किया गया था। इस दौरान वहां मौजूद कुछ युवाओं से समीर आत्मज मिश्र ने बात की।
ये जो पार्टी में चल रहा है आपकी पार्टी में, तो इसका अंजाम क्या दिख रहा है?
ये पार्टी माननीय अखिलेश जी की देन है, जो समाजवादी पार्टी 2012 में जिस प्रकार यहाँ की नौजवान, किसान, उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ उत्तर प्रदेश की आवाम के जो दिल की रखी है, जिनको पसंद किया, माननीय अखिलेश सिंह यादव है। जो माननीय अखिलेश सिंह यादव जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की काम किए, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की उन्होंने जो गति दिए विकास, अमान्य नेता जी, समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता होंगे उन सब के परम पूज्य आदरणीय हैं। नेताजी रहेंगे, उनके अंदर सारे लोग आएंगे।
आप भी पार्टी कार्यकर्ता ही हैं और आपकी पार्टी में जो हो रहा है ये सब क्या हो रहा है? 2-3 महीने बाद चुनाव में जाना है आप लोगों को।
सब ठीक हो जाएगा, पार्टी में कोई ऐसा मतभेद नहीं है, नेताजी की बात सब लोग मानेंगे।
मैं संतोष यादव, समाजवादी पार्टी को 1992 में हम लोगों ने पैदल चल के, भूखे रह के, माननीय श्री रामचंद्रदास जी के साथ रह के संस्थापक के रूप में हम लोगों ने बनाया और काम किया। आज ये जो कार्य हो रहा है ये समाजवाद की परिधि में नहीं है, आम कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है और वो असली समाजवाद की खोज में लग रहा है कि समाजवाद है कहाँ पे।
ये सब बहुत गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए जो है,
और इसका जो है मतलब बहुत दूरगामी प्रभाव, इन लोगों को आपस में बैठ के जो है विचार विमर्श करके अपने जो भी बातें हों आपस में मतलब बातचीत करके, बातचीत के माध्यम से उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। और आगे विधानसभा का इलेक्शन सामने है और मैदान मतलब क्षेत्र में जाके जो है अपने मतलब कैंडिडेट को जो है जाए वो अपना प्रचार प्रसार करें जो है पार्टी।
क्या नाम है, आप कहाँ से हैं?
राधेश्याम यादव, गोमती नगर,
मतलब लखनऊ से ही है आप। तो आप ये बताइए कि ये आसार दिख रहे हैं, कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं कि सब सुलझ जाएगा, आपको लग रहा है कि दो तीन महीने बाद चुनाव होने हैं और ये सब सुलझ जाएगा?
नहीं, नेता जी लगे हैं सुलझाने में, सुलझ जाएगा। उसे
कहाँ सुलझ जाएगा, रोज एक बड़ा नेता निकलता चला जा रहा है।
नहीं, ऐसी बात नहीं, सुलझ जाएगा, सब एक है परिवार के।
गोपाल कोई मतलब थोड़ा, उनको तीन चार साल पहले निकाल देना चाहिए था, इन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, इनकी वजह से पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदनाम हुई।
क्यों, कैसे कहते हैं आप?
यार सीबीआई जांच में इनके बच्चा फंसा, इनकी बहू फंसी, यादव सिंह से इन्होंने पैसा ले लिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा लूट के खा लिया इन्होंने, इनको निकाल देना, बहुत अच्छा काम किया।
नहीं, आप कह रहे हैं कि ये काम पहले होना चाहिए, पहले इसकी मांग क्यों नहीं हुई पार्टी के लोगों?
नेता, ये तो बड़े नेताओं का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, पर नेता जी ने जो किया बहुत अच्छा किया है।
हम लोग कार्यकर्ता हैं, छोटे लोग हैं, जो इनका आपस पारिवारिक का है उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ मिशन 2017 पे हमारी नज़र है, हम उसके लिए हम लोग कहने गए थे। अब आप लोगों की बहुत बात हो गई, हम कार्यकर्ताओं को भी सुने, क्योंकि हम लोगों ने 2500 साल इस पार्टी में दिया है, कई आंदोलनों में जेल गए हैं, डंडे खाए हैं, लाठी खाए हैं, ये सब कार्यकर्ता की आवाज़ है कि पार्टी एक हो।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत प्रशासित कश्मीर में तकरीबन 4 महीनों से जारी अस्थिरता में आज जरा सी बर्फ पिघलती नजर आई, क्योंकि पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में 5 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर में अलगाववादियों से बात की। इस बातचीत से सिर्फ एक दिन पहले हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक को जेल से रिहा किया गया था। और जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
यशवंत सिन्हा, वजाहत हबीबुल्ला, सुशोभा बारवे, भारत भूषण और कपिल काक पर आधारित ये प्रतिनिधिमंडल कल ही कश्मीर पहुंचा है। आज सुबह जब ये प्रतिनिधिमंडल हुर्रियत नेता सईद अली गिलानी के घर पहुंचा तो वहां 1 घंटे तक बातचीत के बाद यशवंत सिन्हा ने बताया कि वो बातचीत के नतीजे से संतुष्ट हैं। मिस्टर सिन्हा ने बताया कि बातचीत बहुत ही खुशगवार माहौल में हुई।
हम लोगों का मकसद ही था बातचीत करना, तो उस मकसद में हम कामयाब।
बाद में कल ही जेल से रिहा किए गए एक और हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक के घर पर प्रतिनिधिमंडल ने लंबी बातचीत की। मीरवाइज उमर ने बताया कि इन्हें बातचीत के बारे में मिस्टर गिलानी ने पहले ही सूचित किया था।
आज सुबह मेरी गिलानी साहब के साथ फोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि डेलीगेशन मिल रहा है और मैं उनको अपने मौकफ के हवाले से बात कर रहा हूँ और आप भी, मैंने आपसे भी मिलने आएगा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी उसी हवाले से उनके सामने बात रखूंगा।
मीरवाइज उमर ने बताया, हालांकि प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने कहा कि वो सरकार की तरफ से नहीं आए हैं, लेकिन अगर ये सरकारी प्रयास भी होता तब भी उन्होंने सच बात कही है। इनका कहना था कि वाजपेयी सरकार के दौरान हुर्रियत के साथ इंसानियत के दायरे में बात की गई थी, लेकिन आजकल कश्मीरियों के साथ गोलियों की जबान में बात की जाती है और ये सिलसिला जब तक बंद नहीं होता कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। गौरतलब है एक और हुर्रियत नेता यासीन मलिक को जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से ये कहकर मिलने से इनकार किया है कि कश्मीर में डर का माहौल खत्म हो जाने तक किसी भी रूप की बातचीत का कोई फायदा नहीं है। गौरतलब है तकरीबन 4 महीने से घाटी में अलगाववादी आंदोलन जारी है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों में अब तक 90 से अधिक लोग मारे गए और 15,000 घायल हैं। सरकार का कहना है कि 5,000 सुरक्षाकर्मी भी पथराव की घटनाओं के दौरान घायल हो गए हैं। अलगाववादियों की कॉल पर हड़ताल लगातार जारी है। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में हिंदुत्व पर दिए गए फैसले पर दोबारा विचार करने से मना कर दिया है। अदालत ने ये बात इस बारे में दायर याचिका के जवाब में कही। विनीत खरे की रिपोर्ट।
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाद, थिएटर कार्यकर्ता शमसुल इस्लाम और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच से कहा था कि 1995 में हिंदुत्व पर दिए जस्टिस वर्मा के फैसले के कारण हिंदुत्व राष्ट्रीयता की पहचान हो गई है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुत्व या हिंदू धर्म जीने का तरीका है और इसका ताल्लुक हिंदुत्व की संकीर्ण रूढ़िवादी धार्मिक सोच से नहीं है। जहां भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टियों ने इसका स्वागत किया था, आलोचकों का आरोप था कि फैसले से राजनीति में धर्म के गलत इस्तेमाल को न्यायिक मान्यता मिल गई है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि 1995 के फैसले का विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। लेकिन चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस बात की जांच कर रही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत दिए गए करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस यानी भ्रष्ट चुनाव संबंधी चलन क्या है। अदालत ने कहा कि वो इस बारे में विचार नहीं कर रही है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत हिंदुत्व क्या है। अदालत ने कहा फिलहाल वो खुद को मुद्दे तक ही सीमित रखेगी। अगर किसी ने हिंदुत्व का संदर्भ सामने रखा तभी अदालत उस पर विचार करेगी। इस बारे में याचिकाकर्ता शम्सुल इस्लाम ने बीबीसी को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
मेरा कंटेंशन ये है कि आप मेल प्रैक्टिसेस को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, उसको चेक करना चाहते हैं, तो उस जजमेंट में जाए बिना कैसे होगा, उस जजमेंट को स्क्रूटनाइज किए बिना या उसको रिविजिट किए बिना कैसे होगा।
और उस जजमेंट को लेकर क्या इश्यूज हैं आपके?
वो जजमेंट जो है मेजोरिटोरियन कम्युनलिज्म को जस्टिफाई करता है। मैं सोचता हूँ कि ये लंबी लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट का भी क्या मंशा है ये समझने का भी जरूरत है, क्योंकि पिछली बार जो था बड़ी होपफुल बातचीत हो रही थी। हमने वर्मा साहब के जो बाद के इंटरव्यूज है उनको देखना चाहिए, जो हमारी पूजनीय हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो वर्मा साहब ने जो कहा कि हाँ उसमें बड़ी गलती है उस जजमेंट में, वो भी हमने जानना चाहिए।
आपके पास अब लीगल ऑप्शंस क्या हैं सर?
नहीं, लीगल ऑप्शंस तो बहुत है ना, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो सबमिशन जारी रखी हैं, जो सारी सबमिशंस हैं।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा था कि इतिहास, संस्कृति, सामाजिक पढ़ाई और कानून की संकीर्ण व्याख्या से भारत में राष्ट्रीयता की मूल सोच पर खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले हफ्ते दायर की गई याचिका में कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि धर्म और राजनीति को मिलाया नहीं जाना चाहिए और धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग करने के लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। पाकिस्तान में अधिकारियों ने बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में हुए हमले के लिए शिया विरोधी चरमपंथी संगठन लश्करे झंगवी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दो समूहों तथाकथित इस्लामिक स्टेट और तालिबान के गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कल रात करीब 10 बजे 3 आत्मघाती हमलावरों ने सरिया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को अपना निशाना बनाया, जिसमें करीब 60 जवानों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। घटना के बाद बीबीसी से बात करते हुए कुछ लोगों ने कहा,
ये आखिर कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो कि हमारे मुल्क को इस तरह दीमक की तरह चाट रही हैं? अब उनको बेनकाब करना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम लोगों की भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें आखिर कौन अपने हाथों में खेलने का, हम किसको इजाज़त दे रहे हैं कि हम उनके हाथों में खेलें।
बहुत बड़ी दुख की बात है, जैसे पता चला एक सदमा सा आया पाकिस्तानियों को, तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करेंगे और हमारी फोर्सेस पूरी अमाम पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ खड़ी है इस वक्त।
क्वेटा के लोगों की आवाज़। घटना के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान में बीबीसी संवाददाता कासिम मेंगल से बात की हमारे सहयोगी अमर शर्मा ने।
जी, अपडेट ये है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान हैं अनवर उलक काकड़, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पे हमला हुआ, उसमें 60 लोग हलाक हुए हैं और 124 के करीब जो है ना लोग इसमें जख्मी हैं। और ये जो जितने भी हलाक और जख्मी लोग हैं, इन तमाम के तमाम जो है ना सिक्योरिटी और पुलिस के जो है ना लोग हैं, और इनमें ज्यादातर जो पुलिस के जो रिक्रूट्स हैं या जो कैडेट्स हैं या जेर तरबियत एहलकार हैं उनकी तादाद है। और ये जो लोग इसमें मारे गए हैं, इनमें से जो ज्यादातर जो पुलिस एहलकार हैं वो ईरान और से मुत्तसिल बलूचिस्तान के दो अजला हैं, केच और पंजगूर, ये बलोच आबादी वाले इलाके हैं। इनमें जिन सरकारी हुकाम का कहना है कि जो मारे जाने वाले जो पुलिस कैडेट्स हैं, इनमें से 13 का ताल्लुक जिला केच से है और बाकी जो है ना 12 का ताल्लुक जो है ना जिला पंजगूर से है। اور سلسلے میں اب تک جو سرکاری حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور جو وفاقی تحقیقاتی ادارے ہیں اور بلوچستان حکومت کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ جو ہے نا جائے وقوع کا جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ جو تین خودکش حملہ آور ہیں ان کی شناخت کے لیے بھی ان کا جو ہے نا ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے گئے ہیں۔ جی
سرفراز بگٹی جو گرہ منتری ہیں، موقع معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے حملوں کو رکنا بہت مشکل ہے، ان کے معنی کیا تھے؟
دیکھیے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خودکش حملے ہیں وہ ان کو روکنا ہے وہ قدرے مشکل ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی جو ہے نا ان کو روکنا جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو پولیس ٹریننگ کالج ہے اس میں جو ہے نا جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں، جو کئی حوالوں سے نقائص بھی سامنے آئے ہیں، اس کی جو دیواریں ہیں ان میں سے کوئی صحیح معنوں میں ان پہ انتظام نہیں تھا، اور کوئی بہت سارے اس کے جسے ہیں ان پہ خطاکاری بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے سرفراز بگٹی ہے اور جو دوسرے حکام ہیں وہ تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک کہ اس حوالے سے کوئی سیکورٹی لیپس ہے، لیکن آزاد جو ذرائع ہیں یا جو صحافیوں نے جو اس علاقے کا جو معائنہ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے جب انہیں معلوم ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور بہت سارے جو حملے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے نا اس کی سیکورٹی کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن جو سرکاری حکام ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس حوالے سے کوئی سیکورٹی لیپس ہے۔ تاہم یہ سوال بھی جو ہے نا میڈیا کے نمائندوں نے سرفراز بگٹی سے کیا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ سیکورٹی لیپس نہیں ہے، تاہم اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کے بارے میں تحقیقات کی جائے گی۔
یہ تھے کوئٹہ سے بی بی سی سنواددتا کاظم مینگل۔ بھارت پاکستان کے بگڑتے رشتے اب بھوجپوری کے دیوی گیتوں میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ اس بار تہوار کے سیزن میں لانچ ہوئے دیوی گیت پاکستان کے ارد گرد گھومتے رہے۔ ہندوستان میں میلادی بلوچستان، ایمائی پھونک دے پاکستان کے، پھارپ پاکستان کے، اڑا دی پاکستان ایمائی جیسے البم سے دیوی گیتوں کا بازار پٹا پڑا ہے۔ پٹنہ سے سیتو تیواری نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
بھوجپوری گیتوں میں اس طرح کے الفاظ اس تہواری سیزن میں خوب سننے کو مل رہے ہیں۔ ہندو بھگوانوں سے سکھ شانتی مانگنے کی بجائے اب کی بار پاکستان کا سنہار کرنے کی باتیں بہت آکرامک طریقے سے بھوجپوری کے دیوی گیتوں میں سنائی دے رہی ہے۔ ہندوستان میں میلادی بلوچستان ایمائی البم کے گیتکار امت رنجن کہتے ہیں کہ وہ اپنے مانوتا دھرم کے چلتے بلوچ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔
دیکھا نیوز پہ یا سماچار سے میں نے دیکھا کہ بلوچ لوگوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے، پردھان منتری کے بھاشن سے بھی میں نے پرنا مدد کے لیے کوئی آئے، اس لیے میں نے یہ گیت کو لکھا۔
کچھ ایسی ہی بات ایم آئی پھونک دے پاکستان کے البم کے گیتکار منا دوبے بھی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے نپٹنا اب انسان کے بس کی بات نہیں رہی، اس لیے میاں ہی پاکستان سے نپٹیں گی۔
آج آپ کے ساتھ سب سے بڑا وہ ایک دیش ہے، اسے ختم کرنا اگر ہم انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے تو ہم اوپر والے سے یہ پرے کرتے ہیں تاکہ وہ اس آتنک کو روک سکیں۔
بتا دیں بھوجپوری گیتوں میں اب سی ڈی کا بازار لگاتار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب گیت بھوجپوری سے جڑے ویب سائٹس کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ لمبے سمے تک سی ڈی کاروبار سے جڑے اور اپنا ریکارڈنگ اسٹوڈیو چلانے والے گوری گپتا بتاتے ہیں کہ اس بار دیوی گیتوں میں بہت سارے البم پاکستان کے نام پر لانچ ہوئے، لیکن جو البم پاکستان کے نام پر لانچ نہیں بھی ہوئے ان میں بھی آپ کو ایسے گانے مل جائیں گے۔
لگ بھگ سبوں میں ایک دیش بھکتی گانا ہے جو سیدھا سیدھا پاکستان کو ریلیٹ کرتا ہے یا بلوچستان کو ریلیٹ کرتا ہے۔
ڈبلو ڈینجر ایسے ہی گائک ہیں جن کے البم کا نام مہیما شیراوالی کا ہے، لیکن اس میں گانا ہے دھکے چیر دا میا پاکستان کے چھاتی ہو۔ اتر پردیش کے مئو کے ڈبلو ڈینجر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فوجی دوستوں کے کہنے پر ایسا گانا گایا اور اس سے ان کو آتم سنتشٹی مل رہی ہے۔
ہم گانا گاتے، کئی لوگ میرے دوست آرمی میں گئے اور بولے کہ اس کا گانا گاتے تھوڑا اچھا لگے گا، ہم نے گا دیا اور وہ گانے بہت لوگوں کو پسند ہوا۔
वहीं फारब पाकिस्तान के गायक आरजू अंचल कहते हैं कि जो गीत उन्हें मिलेंगे वो उसे गाएंगे, बाकी ये तो देश की बात है, इसमें हाँ ना या मुनाफे नुकसान का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि लंबे समय से भोजपुरी गीतों पर काम कर रहे गायक इन बातों से सहमत नहीं दिखते। भोजपुरी के प्रसिद्ध लोक गायक अजीत अकेला कहते हैं,
जो लोग गायों को लगा होगा कि इस तरह गाऊं तो मैं हिट हो जाऊं, ऐसा नहीं है कि वो माँ की भक्ति के लिए, इस तरह का मैटर माँ की भक्ति के लिए नहीं किया जाता, वो सिर्फ हिट होने के लिए कि मेरा गाना हिट हो जाए मार्केट में, इसलिए ऐसा लोग करते हैं।
इन सबसे इतर 30 भाषाओं में गायन करने वाली कल्पना पटवारी एक नई बात कहती हैं। बॉलीवुड लोक गीतों के साथ साथ भिखारी ठाकुर की विरासत और बिहार यूपी के श्रमिक वर्ग की गायन शैली बिरहा पर काम करने वाली कल्पना इसका जिम्मेदार भोजपुरी के बुद्धिजीवी वर्ग को बताती हैं। वो कहती हैं,
निचले उत्तर के जो वो लोग ज्यादा हावी है क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं काम कर रहे हैं वो, और जो ऊंचे वर्ग है जिनके पास एक विजन है, एक सोच है, विचार है, बैठ के हम कंप्लेन तो कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ के ऐसे काम नहीं कर रहे भोजपुरी पे, या फिर वो बिजी है हिंदी में काम करने के लिए।
ऐसी आम समझ है कि भोजपुरी गीत संगीत और फिल्मों से जुड़े लोगों का मकसद मुनाफा कमाना होता है, क्योंकि अभी उनको ये मुनाफा भारत पाक के तल्ख होते रिश्तों में दिख रहा है, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री पर पाकिस्तान छाया हुआ है।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है राखी शर्मा के साथ।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। मोहाली वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल कर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई। कल महेंद्र सिंह धोनी की टीम के पास सीरीज पर कब्जा करने का मौका होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का 4वां मुकाबला कल रांची में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जहां अपने घरेलू मैदान पर इस मैच को जीतकर सीरीज में निर्णायक बढ़त बनाना चाहेंगे, वहीं न्यूजीलैंड की पूरी कोशिश सीरीज में वापसी करने की होगी। मोहाली में हुए तीसरे वनडे में धोनी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, जहां उन्होंने 80 रन की पारी खेल डाली। धोनी के बदले बल्लेबाजी क्रम को साथी खिलाड़ी पसंद कर रहे हैं, जिनमें युवा हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं।
अच्छा लग रहा है, हमको भी देखने में मजा आ रहा है, और उनने भी बहुत बार एक चीज़ बोली कि जब 7 पे बैटिंग करते हैं तो सिचुएशन वाला गेम हो जाता है, और वही 4 पे बैटिंग का तो डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो डेफिनेटली वो जो जब 4 पे बैटिंग करे तो भी मजा आ रहा है और 7 पे करे तो भी मजा आ रहा है।
और वहीं अब से कुछ ही देर बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के अपने 4थे लीग मैच में चीन का सामना करने उतरेगी। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाया है। पहले मैच में जापान को 10-2 से हराने के बाद कोरिया के साथ उसने ड्रॉ खेला, जबकि तीसरे मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ उसने 3-2 से शानदार जीत दर्ज की। चीन के खिलाफ भारत के रिकॉर्ड और दोनों टीमों की रैंकिंग को देखते हुए मैच में भारत का पलड़ा भारी माना जा रहा है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का ये 4था संस्करण है और भारत 2011 में एक बार इसका खिताब अपने नाम कर चुका है। और अब बात बैडमिंटन की। बैडमिंटन में आज से फ्रेंच ओपन की शुरुआत हो रही है। पिछले हफ्ते डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में बाहर होने वाली भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु कल से अपने मुकाबलों की शुरुआत करेंगी। पहले राउंड में सिंधु का मुकाबला हांगकांग की यी पू यिन से होगा। वहीं पुरुष एकल में डच ओपन के उपविजेता अजय जयराम को पहले दौर में क्वालिफायर से भिड़ना होगा, जबकि स्विस ओपन चैंपियन HS प्रणॉय का सामना थाईलैंड के बुनसाक पोनसाना से होगा। कनाडा ओपन की विजेता बी साई प्रणीत कोरिया के ली ह्यून इल से भिड़ेंगे। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पूरी पार्टी एक है और कहीं मतभेद नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में सोमवार रात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हुए चरमपंथी हमले के लिए चरमपंथी गुट लश्करे झंगवी जिम्मेदार है। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े थीम पार्क में एक राइड के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। क्वींसलैंड स्टेट के ड्रीम वर्ल्ड में थंडर रैपिड नाम की राइड में गड़बड़ी के चलते यह हादसा हुआ। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक इराक के मोसुल के आसपास के इलाकों में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने 15 नागरिकों को मार दिया है, जिससे लोगों में डर फैल सके। फ्रांस के कैले में जंगल के नाम से जाने जाने वाले शरणार्थी शिविर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। विस्थापितों को बसों में बैठाकर वहां से हटाने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम से कैंपेन चलाने वाली संस्था का कहना है कि तुर्की पुलिस जुलाई में हुए नाकाम तख्तापलट के बाद बंदी बनाए गए आरोपियों पर अत्याचार कर रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संचालन कर रहे थे अजीत सारथी, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।